किसको जन्नत में जाना है। बड़ा प्यारा मजमा है, बड़ा कीमती मजमा है। अल्लाह पाक ने बड़ी जबरदस्त नेमतों से हमें और आपको नवाजा है। सारे भाव और ईमान की बुनियाद के ईमान वाला इतना कीमती है कि ईमान के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला दुनिया आखिरत की कामयाबी का वादा फरमाते हैं। हमें माँ के गोद से ईमान मिला है, बाप दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, हम भी मुसलमान, और अल्लाह पाक ने हमारा नाम ईमान रखा है, हमारा नाम मुसलमान रखा है। क्या रखा भाई? मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, के मुसलमान नाम किसने रखा? अल्लाह पाक ने हमको मुसलमान नाम रखा हमारा। इसलिए दोस्तों, हम और आप बड़े कीमती हैं, और बड़ी कीमती नेमतों से अल्लाह पाक ने हमें सरफराज फरमाया। हाँ, दुनिया की सारी नेमतें इंसान मौत के पर छोड़ देगा, ईमान की नेमत दुनिया में भी साथ, कब्र में भी साथ, पुल सिरात में भी साथ, और कयामत के मैदान भी हमारे साथ रहेगा। और इसी ईमान की बुनियाद के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला हमें हमेशा की राहत वाली जगह जन्नत नसीब फरमाएंगे। इसलिए दोस्तों, ईमान बड़ा कीमती दिया है। ईमान हमसे क्या चाहता है? जैसे एक दुकानदार होता है, दुकान तकाजा करती है इस पर आदमी मेहनत करे, जान लगावे, माल लगावे, वक्त लगावे, सलाहियतें लगावे। ऐसे फरमाया कि खेती वाला आदमी खेती पर मेहनत करता है और खेत उससे तकाजा करता है। खेत पर इंसान जान लगाता है, माल लगाता है, वक्त लगाता है, सलाहियतें लगाता है, गाढ़े पसीने की कमाई उस पर लगाता है। ऐसे फरमाया कि ईमान हमसे तगासा करता कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि किसी से कुछ नहीं, अल्लाह से सब कुछ। इल्लल्लाह का माना कि अल्लाह ही करते, अल्लाह ही पालते, नफा नुकसान, मौत हयात, इज्जत जिल्लत, बीमारी तंदुरुस्ती, दुनिया में जो कुछ हो रहा है अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है। और अल्लाह ताला सब कुछ करने के अंदर किसी भी असबाब के मोहताज नहीं, किसी शक्लो सूरत के मोहताज नहीं है। पहले अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कोई शक्लो सूरत मॉडल नहीं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से इंसान को पैदा किया है। पहले जो दरख्त लगे, बीज आया, जो भी कुछ है दुनिया में देखते हैं, उसका सैंपल मॉडल नमूना नहीं था। अल्लाह पाक ने बगैर सैंपल के, बगैर मॉडल के, बगैर नमूना के सारी चीजें इंसान के लिए, हमारे लिए पैदा फरमा दी। ये कारखाना अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए बनाया दुनिया, और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया कि तू तो मेरे लिए है, मेरी ताकत वाली, मेरी मर्जियात वाली तू जिंदगी गुजारने वाला बने। हाँ, कि मेरी जिंदगी में अल्लाह का कोई हुक्म ना टूटे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीका ना छूटे। हाँ, ये कलमे का तकाजा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से यही बात चाही जाती है कि दिलों का यकीन एक अल्लाह की जात वाला बन जावे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाजा ये है कि हमारे जिस्म से निकलने वाले आमाल और हमारे रहन सहन के और जितने भी तरीके हैं, उसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी मुबारक पाकीजा तरीका अपनी जिंदगियों में उतारे। कि ला इलाहा इल्लल्लाह दिलों में उतारना और जिस्म से आमल से जाहिर हो गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे दवा अंदर में जाती है, शिफा मिलती है, ऐसे कलमा अंदर में दिलों में उतरेगा तो फिर हमारी जुबान का देखना, बोलना अल्लाह की मर्जी वाला बोलेगा, है नहीं? हमारा देखना, कानों का सुनना, हाथ पैर का इस्तेमाल, दिलो दिमाग का इस्तेमाल, ये सारे आजा और जवाहिर का इस्तेमाल अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाएगा। और अल्लाह वाला आदमी बन जावे, अल्लाह की मर्जी वाला बन जावेगा तो दोस्तों, दुनिया में भी राहत, मौत के वक्त भी राहत, कब्र में भी राहत, और आखिरत के हर मरहले के अंदर उसको राहत और यानी चैन सुकून के साथ वो जिंदगी गुजारेगा। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने ये इस्तिमा का एक मौका दिया है। हमें और आपको मेहनत करके जमा किया है, ऐसे नहीं जमा हो गए, दो ढाई महीने से पहले इस्तिमा की मेहनतें हुई, घर घर फरद के पास जाकर, गलियों में जाकर, जोनों की जमाते चलकर, मेहनतें कर कर इस्तिमा की दावत दी, और इस्तिमा के उन्वान के ऊपर हम और आप यहाँ पर जमा हो गए। अब इस्तिमा हमसे क्या चाहता है कि ये वक्त हमारा बड़ा कीमती है, गोल्डन चांस है। साल भर में हमारे बुजुर्गान दीन उलमाए किराम साल भर में एक मर्तबा आते हैं और इनकी बातें हमको समझाते हैं हमारे लिए, इसमें हमारी खैर हमारी भलाई वजूद में है। तो ये मजमा माशाल्लाह समझदारों का मजमा है। हाँ, तो हमारा वक्त इस्तिमा के लिए फरमाया कि सही गुजरे, एक एक सेकंड एक एक मिनट हमारी गफलत के साथ सुस्ती के साथ ना गुजरे, बल्कि चुस्ती के साथ जिस मकसद के लिए बीवी बच्चों को घर कारोबार को समाज संसार को सोसाइटी को छोड़ा है, इसका मकसद समझ कर के हम मकसद के लिए छोड़ा तो मकसद के मातहत हमारा वक्त गुजरे। तो दोस्तों ये बड़ा कीमती हमारा इस्तिमा है। साल भर में एक मर्तबा ये बड़ा हमारा इस्तिमा होने होता है और उसके अंदर हमारे बड़ों की तरफ से हिदायत की जाती, इनको हम ध्यान से सुने, दिलों के अंदर उतारने वाले बने। तो मैं यूं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये वक्त बड़ा कीमती बनाया। ऐसे ही वक्त तो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, अगर इनको वसूल कर लिया जावे, है ना। फजाइल आमाल में लिखा है नहीं, हमारे बुजुर्गान दीन असलाफ सहाबा ने वक्तों को कैसे वसूल किया, कि रोटी चबाना छोड़ दिया रोटी खाना। किसी ने अर्ज किया कि क्यों ऐसा किया, फरमाया कि रोटी चबाने में 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का हर्ज होता है, नुकसान होता है। तो सत्तू से जिंदगी फाक कर गुजारी, वक्तों को वसूल किया। इसलिए दोस्तों हमें और आपको भी इन वक्तों की बड़ी कदर करना है और इसके अंदर हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद रखें दिलों के अंदर। जिक्र के जरिए से अल्लाह पाक दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा फरमाते, दिलों के अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत पैदा फरमाते, और जिक्र के जरिए से अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो जाता है। जब अल्लाह का डर खौफ दिलों में पैदा हो जाता है, हर छोटे बड़े गुनाह से बचना इंसान के लिए आसान हो जाता है। और अल्लाह का डर नहीं होता है तो छोटे गुनाह क्या बड़ा गुनाह भी इंसान कर लेता है। तो मकसूद ये है कि अल्लाह का जिक्र इतना करें, कसरत से इतना करें कि अल्लाह की मोहब्बत दिलों में उतर जावे, अल्लाह का डर खौफ दिलों में पैदा हो जाए। मेहनत होती है तो दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता है। बयाबान जंगल का चरवाहा है, है ना। किताब में पढ़े ना इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, काफले के साथ जंगल में जा रहे थे, दोपहर का वक्त हो गया, साथियों ने दस्तरखान बिछाया, खाना रखा, सब बैठने लगे, पास में एक बकरियों का चरवाना चराने वाला चरवाहा बकरियों का रेवड़ को लेकर जा रहा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको भी खाने की तवाजु की दावत दी कि भाई तू भी आ जा खाना खा ले। उसने तो फरमाया कि मेरा तो रोजा है, बयाबान जंगल और रमजान नहीं नफिल रोजा, और लू शिद्दत से चल रही है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा कि तो कोई बड़ा बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, दोस्त है, ऐसी शिद्दत के अंदर गर्मी के अंदर बयाबान जंगल के अंदर रोजा रख रहा है। उससे फरमाया कि तू रोजा ऐसे जगह पर रख रहा है, मैं तो अय्या में खालिया को वसूल कर रहा, जन्नत को हासिल करने की मेहनत कर रहा, जहन्नम से बचने की मेहनत कोशिश कर रहा। आज तो हमें जन्नत का शौक नहीं, जहन्नम का खौफ नहीं। इसलिए दोस्तों बयाबान जंगल का चरवाहा इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने दिल में सोचा कि बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, ला उसका इम्तिहान ले ले, वो अपनी बात में कितना सच्चा पक्का है। तो इम्तिहान के तौर पर कहा कि भाई ये बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी का बच्चा हमें दे दे, कीमत तू वसूल कर ले, शाम को तेरे इफ्तार के लिए हम गोश्त भी देंगे। उसने कहा कि ये मेरी बकरियां नहीं है, ये तो मेरे आका की मालिक की बकरियां हैं। ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خود بھی مالک بھی نہیں ہے, یہ تو چرواہا ہے, کسی اور اس کا مالک ہے, لاؤ اس کا امتحان پریکشا کسوٹی لے لے. کہا کہ بھائی ایک بکری کا بچہ ہمیں دے دے, قیمت تو وصول کر لے, تیرے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کا بچہ بھیڑیا اچک کر چلا گیا, تو اس کو کیسے پتا چلے گا. چرواہے نے فرمایا کہ میرا چھوٹا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے. فائن اللہ, اللہ کہاں چلے جائیں گے, اللہ کہاں چلے جائیں گے, اللہ تو ہر حال میں دیکھنے والا ہے. یہ محنتوں کے ذریعے سے دوستو دلوں کا یقین, دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوا تھا. ہاں, بیابان جنگل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رات کو گشت کرتے تھے امیر المومنین, ہاں, اور گلیوں میں سے گزر رہے تھے, ایک مکان میں سے آواز آئی, اماں بیٹی سے فرما رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دیں. بیٹی عرض کرتی ہے کہ امی جان, امیر المومنین نے منع فرمایا ہے, امیر المومنین نے منع فرمایا. امی جان تو تربیت کر رہی ہے, بیٹی کی دین کی تربیت کر رہی ہے دین کے اعتبار سے. امی جان نے فرمایا کہ بیٹی مدینہ کی کالی گنگور گھٹا جیسی رات ہے, پاس والا ہاتھ نہیں دکھتا ہے, اتنی کالی گھٹا رات کا وقت اندھیرا, امیر المومنین کہاں دیکھنے والا. بیٹی نے عرض کیا کہ امی جان, امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں, امیر المومنین کا خدا تو دیکھنے والا ہے. یہ محنتوں کے ذریعے سے دوستو دلوں میں اتارا تھا کلمہ, اور اللہ کا ڈر اللہ کا خوف پیدا کیا. اس لیے ان وقتوں کو ہم غنیمت سمجھ کر ہمیں اور آپ کو اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی یاد کرنا دلوں کے اندر, اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنا ہے اس وقتوں کے اندر. تو ایسے تو ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کرنا ہے, لیکن وقتوں کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا قیمتی بتلایا جاتا. حدیث قدسی ہے نا, تو صبح کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا, میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کفایت کفالت ہماری فرما دے. اس لیے دوستو ان وقتوں کے اندر ہم اللہ کا ذکر کریں, یہ تو عادت ڈالنے کے لیے تین تسبیحات بتائی جاتی ہیں, ورنہ ایمان والے کا ہر عمل اللہ کے ذکر میں شمار ہو. کھانا بھی ہمارا سنت طریقے کے مطابق, سونا بھی سنت طریقے کے مطابق, بیت الخلا جانا بھی نکلنا بھی, ہر ایک عمل, شادی ہو, موت میت ہو, یعنی تجارت ہو, کوئی بھی ہمارا عمل ایمان والے کا اللہ کے حکم کے مطابق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مبارک پاکیزہ طریقوں کے مطابق ہوگا. وہ فرمایا کہ پوری زندگی عبادت میں بھی شمار ہوگا, اور اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر اللہ کی ڈر, اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ کی محبت دلوں میں بھر جائے گی. آج معاف کرنا چیزوں کے پیچھے, اسباب کے پیچھے اتنی محنتیں کی کہ چیزوں کی, اسباب کی, دکان کی, عہدے کی, کرسی کی, ڈگری کی محبت دلوں میں اتری, اللہ کی محبت نہیں اتری. دوست ہم اللہ والا بنے. حدیث میں من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. تو ہمیں اللہ والا بننے کے لیے اللہ پاک نے موقع اور چانس دیا ہے کہ تیسرا کلمہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ عرض کے کلمات بتائے. زبان پر بہت ہلکے پڑھنے کے اعتبار سے قیامت کے دن تراجو میں سب سے زیادہ وزنی اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند. سبحان اللہ, کتنا پڑھنے میں چند سیکنڈ لگے, احد پہاڑ کے برابر ثواب اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے. ایک الحمدللہ پڑھیں گے, احد پہاڑ کے برابر ثواب اعمال نامے میں لکھا جائے. اللہ اکبر کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب, اور کتنا خرچہ, یہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس تسبیح یعنی یہ پڑھنے کے اوپر لکھ دیں گے. तीसरा कलमा दोस्तों बड़ा कीमती कलमा है, सुभान अल्लाह। हर ऐब से अल्लाह पाक है, हम तो नापाक हैं, हम तो गंदे हैं, हमारे तो हाथों से गुना, पैरों से गुना, हमारे तो आंखों से गुना। एक कदम आगे बढ़ू, एक स्टेप आगे बढ़ू तो दिलो दिमाग की धड़कने हमारी तो गुनाहों के साथ गुजर रही है, लेकिन अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। तो सुभान अल्लाह के जरिए दिलों में ये महसूस करें कि सारी दुनिया की चीजें नापाक और अल्लाह ही पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वखाण किसके, अल्लाह के हैं, कि अल्लाह ही हमारे बड़े हैं। और अल्लाह के वखाण दिल में तारीफ अल्लाह की हम करें, पानी पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर है अल्हम्दुलिल्लाह की नेमत। और फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, पहाड़ छोटे, समंदर छोटे, दुनिया छोटी, सारी चीजें छोटी, इंसान भी छोटे, कौन बड़े, देखिए अल्लाह कितनी जबरदस्त ताकत कुदरत वाला, उसने आसमान इतना बड़ा बनाया, सुतून भी नहीं है। देखो तो सही, राजकोट के कोई कोने में होगा भाई सुतून नहीं, कितना बड़ा आसमान, जब से बनाया आज तक एक ही कलर का। हमारे मकान तो साल में, दो साल में, पांच साल में पुराने हो जाते, ईद आई या तो कोई त्योहार आया या शादी ब्याह का मौका आया तो के चलो उसको फिर से असरे न, उसको रंग रोगान करो, आसमान को कभी भी करने की जरूरत नहीं। और अल्लाह ने कैसा अधर लटकाया, एक नहीं आसमान, सात सात आसमान। और जब से बना इंसानों की खिदमत कर रहा, बगैर सुतून के एक ही कलर का, किसी जगह पर फटक भी नहीं। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने इतना बड़ा आसमान बनाया। इंसानों को समझाने के लिए के सोचो, मेरी कुदरत को तुम सोचो, मेरी बड़ाई को तुम दिलों में तस्लीम कर लो कि कितना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया। जमीन अल्लाह ने कैसी बिछाई, किस्मा किस्म की जमीन, कहीं काली है, कहीं गोरी है, कहीं और कलर की है, और कैसे फल फ्रूट सब्जी तरकारियां उसमें से निकलती है, इंसान सोच नहीं सकता है। आपके इलाके में तो बड़े बड़े मार्केट यार्ड गेहूं के और तल के और पता नहीं कैसे कितनी 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 चीजें आती है, ये सारी जमीनों से पकने वाली। कपास की मौसम में कपास, रुई है, और बताया कि आम की मौसम में आम, ये सारा सब कुछ अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बीज जमीन में डालता है। इंसान फना हो जाने वाली चीज, जमीन तो खा जाने वाली, लेकिन अल्लाह की कारीगरी कुदरत के तौर पर अल्लाह पाक ने फिर उसको नशोनुमा करके उसमें से बालियां पैदा की, और एक के अंदर से पता नहीं 700 और 7000 तक और 7 लाख तक ये जमीन अल्लाह ने बिछाई। कैसे इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया, देखो इतना बड़ा मजमा, किसी का कलर भी एक नहीं, किसी का नाक भी एक नहीं, आवाज भी सबका अलग अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने कैसे इंसानों को पैदा किया। साइंस वाले लोग कहते हैं कि रोजाना 5 लाख बच्चे अल्लाह यानी अल्लाह के यहाँ से पैदा होते हैं दुनिया में। अब अल्लाह के खजाने से 10 लाख आंखें रोजाना आती, 10 लाख हाथ आते हैं, 10 लाख पैर आते हैं, दूसरे दिन 5 लाख बच्चे दुनिया में आते हैं, 10 लाख आंखें, 10 लाख हाथ, 10 लाख पैर लेकर आ रहे हैं। सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह पाक ने के खजाने में कितनी आंखों का स्टॉक, कितने हाथों का स्टॉक है, कितने पैरों का स्टॉक है, और हर एक चीज अलग अलग पाच है। अल्लाह ने इंसानों को हाथ दिए, हाथ के अंदर उंगलियां दी, उंगलियों के अंदर ये अंगूठा दिया, और अंगूठे के ऊपर नक्शी कारीगरी अल्लाह ने की, हर एक की अलग। तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, अनपढ़ आदमी होगा, दस्तक यानी सही नहीं कर सकेगा, तो कहा कि आप अंगूठा लगा लोगे, क्या बात है कि इसके ऊपर जो कारीगरी अल्लाह ने की है हर एक इंसान की अलग पूरी दुनिया के अंदर। लो कोई है ताकत दुनिया में, ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। इसलिए दोस्तों हमें इन तस्बीहात को ध्यान के साथ, अजमत के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना, दिलों में इसका ध्यान तस्वुर करें, बिठावे दिल में सुभान अल्लाह के अल्लाह हर ऐब से पाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ زبردست قدرت والا ہے، وہ زبردست طاقت والا ہے. ایک منٹ کے اندر جل جلا لا دے وے تو آدمی حیران پریشان ہو جاوے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا، دنیا میں تین حصہ پانی ایک حصہ زمین، اور اس کو پانی پر اللہ نے بچھایا. اللہ کے پانی کی اسٹوریج کی ٹنکیاں پانی کی اندر میں ہیں. انسان موٹریں لگاتا ہے، بورنگ کرتا ہے، پانی اوپر میں آتا ہے، کیسا صاف شفاف پانی. ہماری ضروریات ہے کہ انسان کو اگر پانی نہ ملے تو اس کا نہانا، اس کا صاف کرنا، یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائے. اس لیے دوستو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو سبحان اللہ، یہ تیسرا کلمہ صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہ 99 بیماریوں سے شفا بتائی ہے. اور سب سے چھوٹی بیماری غم، ٹینشن، پریشانی اللہ پاک اس سے دور کریں گے. اور دوسری تسبیح درود پاک کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات. پوری زندگی سجدے میں رہ کر ہم درود شریف پڑھے، آقا پر بھیجے تو بھی کم ہے. ہمارے پیارے آقا نے ہمارے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، یہ امت کے لیے کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا. خود آپ نے فرمایا کہ دین کے لیے مجھے جتنا ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کسی اور نبی کو اتنا ڈرایا، ستایا، دھمکایا نہیں گیا. سوچو دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پڑھتے ہیں، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو آرے سے چیرا گیا، پھر بھی ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ دین کے لیے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، سب سے زیادہ تکلیف والا دن، سب سے زیادہ کون سی گھڑی دنیا میں ایسی کہ جو آپ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. فرمایا عائشہ، قبیلہ ثقیف کی جماعت جو طائف کے وادیوں میں مجھے پہنچائی وہ سب سے زیادہ تکلیف والا دن تھا. فرمایا عائشہ، میری بات تو کیا سنتے، مجھے وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا گیا. میں واپس چلا، ایک ایک قدم اٹھاتا تھا، ایک ایک بھاری پتھر کی برسات برسائی جاتی تھی. میں کئی کلومیٹر پیدل واپس چلا. فرمایا کہ عائشہ، اس پتھر کی بنیاد کے اوپر میرے جسم سے اتنا خون نکلا کہ پاؤں مبارک خون سے تربتر ہو گئے، میری جوتیاں مبارک خون سے چپک گئی. سوچو دوستو، پیارے آقا کون ہیں؟ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء، جن کے صدقے میں کائنات بنی اور کائنات کا ذرے ذرہ پیدا کیا گیا، اور وہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور ایسے پیارے نبی امت کے غم میں، امت کے درد میں، کہ میری پوری امت جہنم سے ہٹ کر جنت والی کیسی بنے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ سن نہیں رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کے پیٹوں کے اوپر دو پتھر بندے ہیں، ایک موقع کے اوپر، جنگ کے موقع کے اوپر. کھانا نہیں ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے دو پتھر. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، اب تو بھوک سے بیچار ہوں اور پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا. آپ نے جواب زبان سے نہیں دیا، اپنا کرتا مبارک اٹھا کر بتایا، پیارے آقا کے پیٹ کے اوپر دو پتھر بندے تھے. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 3 چاند 2 مہینے کا زمانہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. کسی نے عرض کیا کہ امی جان کیسے گزارا؟ فرمایا، 2 کالی چیزوں سے، ایک پانی اور کھجور، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. ایسے 2 مہینے 3 چاند تک کا زمانہ فرمایا کہ پیارے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلا. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گھر کے اندر اس دن چراغ جلا جس دن میری زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے. میرے گھر میں اتنا اندھیرا تھا، मैं यहूद पड़ोसन के घर जाकर उधार थोड़ा छीना, यानी तेल लेकर आई और उससे मैंने घर में दिया जलाया कि उस दिन मेरे घर में दिया जला जिस दिन मेरी जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। दोस्तों, ये प्यारे नबी की कुर्बानियां है, कभी हमको नहीं भूले। हाँ, खुशी का मौका उम्मत को याद किया, एल्ला मेरी उम्मत के साथ क्या मामला किया जाएगा। गमीम का मौका, तकलीफ वाला दिन उम्मत को याद करते थे, एल्ला मेरी उम्मत का क्या हाल बनेगा। आपका दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त है और अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में है और आपने बेटी फातिमा को याद नहीं किया, अम्मी जान आयशा को याद नहीं किया। याद किया तो इस गुनेगार उम्मत को याद किया, एल्ला मेरी उम्मत के साथ कयामत के दिन क्या मामला किया जाएगा। दोस्तों, ये प्यारे नबी की हमारे लिए उम्मत के लिए इतनी जबरदस्त कुर्बानियां हैं। हाँ, अब वो नबी को हम क्या दे सकते हैं कि नबी के ऊपर हम कम से कम 100 मरतबा सुबह में, 100 मरतबा शाम में दरूद पाक पढ़े। हाँ, हमारा नाम लेकर एक फरिश्ता हुजूर के रोजे पर जाकर सलाम पेश करता है, दुरूद पेश करता है, अल्लाह के नबी उसका जवाब देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे आपके लिए नफे के लिए है कि इंसान यहाँ 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, 10 नेकी लिख दी जाती है, 10 गुना माफ फरमा दिए जाते, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 रहमतें अल्लाह की मुतवज्जे हो जाएगी। 1 रहमत बंदे पर अल्लाह की मुतवज्जे हो जावे, दुनिया आखिरत का बेड़ा पार हो जावे। 10 नेकियां देखो, कयामत के मैदान में वहां की करेंसी रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर प्लेटिनम कोई चीज नहीं होगी, वहां की करेंसी तो नेकी होगी नेकी। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत में है कि कयामत का तराजू तोला जाएगा नेकी और बदी, जिसकी 1 नेकी बढ़ेगी दुनिया से 10 गुना बड़ा बदला। और फरमाया कि 1 नेकी कम होगी ईमान वाला है तो दूसरी जगह ले जाएंगे तो वहां पाक गुना धोकर पाक साफ करके उसको जन्नत में लाया जाएगा। तो आज दुनिया दारुल अमल बताई, नेकिया करने की मौसम और सीजन है, कि दुनिया अमल करने की जगह है और आखिरत बदले का दिन है। दारुल जजा या सजा, जैसा किया होगा वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। इंसान जैसे अमाल करता है, जैसा करतूत करता है दोस्तों, ऐसा उसका फैसला होता है। जिंदगी में जो अमाल किए उसके मुताबिक मौत आएगी, कब्र में उसके मुताबिक फैसला होगा, कयामत के दिन उसके मुताबिक उसका उठाव और हसर होगा। इसलिए हमें और आपको दोस्तों, अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर भेजा है अमल करने के लिए कि कौन अच्छे अमल कर कर आता है, कि अल्लाह के दरबार में पसंदीदा अमल अहसन सबसे ज्यादा अच्छे अमल। तो हम दरूद पाक सुबह शाम 100 मरतबा कम से कम पढ़े, जितना हो सके, जो जितना ज्यादा दरूद पढ़ेगा कयामत के दिन शफात का उतना ज्यादा हकदार बनेगा। और अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया कि ये दो उंगलियां जैसे करीब में है, ज्यादा दरूद पाक पढ़ने वाला कयामत के दिन इतना करीब होगा। तो हमें और आपको इन तस्बीहात की पाबंदी करना है, इनको पढ़ना है। और तीसरी तस्बी दोस्तों अस्तगफार की है। हाँ, हमसे उठते बैठते चलते फिरते गुनाह हो जाते, इंसान है बशर है, हाँ उसके साथ जरूरियातें लगी हैं, बीवी बच्चे समाज संसार सोसाइटी सारी चीजें लगी हैं, तो हमसे गुनाह हो ही जाते हैं। और बाज गुनाह तो ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को पता नहीं और गुनाह लिखा जाएगा। हाँ, कयामत के दिन अल्लाह पाक अमाल नामा दिखाएंगे कि ले भाई तू तेरा चौपड़ा तेरा अमाल नामा पढ़ ले, हिसाब कर ले तूने क्या बोया है। वो अमाल नामा देखेगा, यह अल्लाह ये किसने लिखा, छोटी भी नहीं छोड़ी बड़ी भी नहीं छोड़ी। रात को 12 बजे एक दूसरा ख्याल दिमाग में आ गया, यह अल्लाह ये भी लिखा गया। एक जर्रा बराबर नेकी वो भी लिखी जाएगी, जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी लिखी जाएगी। इसलिए दोस्तों, हम और आप तो गुनाहों के अंदर डूबे हुए, इंसान है, गुना हो जाते हैं, लेकिन प्यारे आका ने उसका तलाफी का तरीका भी बता दिया कि गुना हो जावे लेकिन अल्लाह के दरबार में माफी मांग लो, पछतावा कर लो, अल्लाह तो बड़े करीम है, बड़े गफूर रहीम है, माफ करने वाले, उसको तो माफी बहुत पसंद है कि मेरा बंदा दरबार मेरे दरबार में आकर मेरे दर पर हाजिरी देकर मुझसे तोबा मांगता है, मैं गुनाहों को माफ फरमा दे। किताबों में अजीब बात पड़ी कि जमीन से लेकर आसमान तक इंसान के गुनाह छू जावे, 60 साल की जिंदगी कुफर के अंदर गुजर गई, एक मर्तबा तोबा कर ले सच्चे दिल से तो अभी अल्लाह 100 साल के 60 साल के कुफराना गुनाह को माफ फरमा दे। आसमान में अल्लाह चिरागा रोशनी करते हैं, फरिश्ते अर्ज करते कि या बारी ताला ये रोशनी क्यों की आज, फरमाए आपको पता नहीं है राजकोट के फूला बंदे ने आज मुझसे सुलह कर ली, तोबा कर ली, तो उसकी खुशहाली के अंदर आसमान को अल्लाह सजाते, आसमान में रोशनी कर देते। इसलिए दोस्तों गुनाहों से माफी मांगना कि माफी मांगेंगे सच्चे दिल से कि अल्लाह जो गुनाह हो गया अब से नहीं करूंगा, अल्लाह तू माफ फरमा दे, आइंदा जिंदगी मौत के झटके के साथ हमारी गुजरे, यानी मौत के झटके तक उस गुनाह की तरफ मैं कभी मायल नहीं होऊंगा। ये सच्ची पक्की तोबा, यानी जो हो गया है उसके बारे में आंसू बहावे, उसके बारे में अल्लाह के दर के अंदर आकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांग ले। इसलिए अस्तगफार की तस्बीह दी गई है कि उससे गुनाह माफ होते हैं। अस्तगफार यानी क्या? पछतावा। हम और आप गुजराती में पढ़ते थे नहीं छोटे थे, तब 7वीं 8वीं 6ठी क्लास में, तो उस यानी टीचर पढ़ाते थे हा पछतावो विपुल झरणू स्वर्ग थी उतरियू छे पापी तेमा डबुकी दईने पुण्य साड़ी बने छे। वो क्या है? अस्तगफार का तर्जुमा है कि हमसे गुनाह हो गया पछतावा कर लो अल्लाह की दरबार में, माफी मांग लो, अल्लाह कभी भी ये गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह ये गुनाह को तू मिटा दे, माफ फरमा दे तू। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है आज मासूम बेगुनाह, गुनाह से माफी मांगने वाला आज इस तरीके से दोस्तों पाक साफ हो जाता है। यह तो फरमाया ये तीसरी तस्बीह अस्तगफार की है, बड़ी कीमती है, इसमें रोजी की बरकत छुपी हुई है, इससे दिलों का गम टेंशन परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे, इससे सारे मसले का हल हो जाएगा, इससे दुआएं कबूल होती हैं अस्तगफार के जरिए से, दिल से लव लगा कर माफी मांग ले अल्लाह के दरबार कि अल्लाह ये जिंदगी पूरी गुजर गई 30 साल 40 साल 60 साल जैसी गुजारना चाहिए नहीं गुजर सकी, तेरे अहकाम को हमने तोड़ा, तेरे नबी के को तरीकों को हमने छोड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा पापी हूं मैं, तो बहुत बड़ा जुल्म मैंने किया, तू मुझे माफ फरमा दे, तो अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर हम लव लगा कर जी लगा कर दुआ मांगे कि अल्लाह के दरबार में माफी मांग ले वे सारे इंसान, तो अल्लाह तो तोबा को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। इसलिए 3 तस्बीहात की पाबंदी और जिक्र के अंदर दोस्तों बताते हैं कुरान पाक की तिलावत, ये भी अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है, आसमानी किताब सबसे बड़ी किताब कुरान पाक, नबियों के सरदार पर नाजिल हुई, जिब्रील अमीन जैसे रूहुल अमीन फरिश्ते इनको लेकर आए, कितना बड़ा फरिश्ता और कैसा पाक फरिश्ता, और किन पर उतारा जा रहा है? नबियों के सरदार काली कमली वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को देखना इबादत, पकड़ना इबादत, उंगली फिराना मुस्तकिल अजर सवाब। तो अरबी को सीखे, कुरान को सीख कर हम पढ़े, जब तक नहीं आता है तो रोजाना यानी एक पारा अरबी में जो कुरान है उसको पढ़े, और हाफिज कुरान है रोजाना 3 पारा, और जिन इंसान को अरबी में कुरान पढ़ना नहीं आता है फरमाया रोजाना 1 पारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा निकाल कर कुरान को सीखो। दुनिया की चीजें सीखते हैं, दुनिया के कोर्स करते हैं, तो कुरान तो अरबी में अल्लाह ने आसान फरमा दिया, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सीखेंगे तो अल्लाह ताला सिखा देंगे, और सीखते सीखते अगर हमारी उम्र पूरी हो गई कब्रों में चले गए तो कयामत के दिन सीखने वालों में हमारा शुमार फरमाएंगे। इसलिए फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत रोजाना करो। इनमें कुछ सूरते हैं, सूरे यासीन शरीफ, प्यारे आका ने फरमाया कि हर इंसान का दिल होता है और कुरान का दिल यासीन शरीफ है, रोजाना सुबह में पढ़ो, शाम के वक्त पढ़ो। सूरे तबारकल्लजी 29वें पारे के 2 रुकू हैं, उसकी फजीलत में लिखा है फजाइल कुरान के अंदर के तबारकल्लजी की बरकत से कब्र का अजाब अल्लाह हटा देंगे। हर एक इंसान को मरना है, और माँ के पेट से खाली हाथ आया कब्र के पेट में खाली हाथ जाएगा। कब्र में तो जो आमाल किए अच्छे बुरे वो लेकर साथ में जाएगा, दुनिया की सारी चीजें धन दौलत तेरा तो आराम के नक्शे सारे या इंसान के छूट जाएंगे। सिकंदर कितना बड़ा बादशाह, मरते वक्त खादिमों को वसीयत कर रहा है दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखना। खादिम ने अर्ज किया कि बादशाह सलामत ऐसी वसीयत। फरमाया कि मेरे जनाजे को लोक कर मेरी मेरे जनाजे को देखकर रईयत इबरत हासिल करें कि इतना बड़ा दुनिया का हुक्मरान, इतना बड़ा दुनिया का यानी के बादशाह, फौज उसके पास, लश्कर उसके पास, हथियार उसके पास, दुनिया के पेट से कब्र के पेट में खाली हाथ जा रहा। तो हमें और आपको भी कब्र में खाली हाथ जाना है। कब्र में 2 जो ऑप्शन है, चाहे जन्नत का बाग जहन्नम का घड़ा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कब्र में। इसलिए दोस्तों कब्र के अजाब से बचने के लिए, कब्र की तैयारी अभी से करने के लिए सूरे तबारक अल्लजी 29वें पारे के 2 रुकू रोजाना पढ़ने। सूरे वाकिया अल्लाहु अकबर कितने फजाइल 27वें पारे में के जिनके सूरे वाकिया जिस घर में पढ़ी जाएगी इनके घर में कभी फाका नहीं आएगा, कभी तंगदस्ती और मोहताजी नहीं आएगी। जबान मेरी है, खबर नबी की है। यकीन की बुनियाद पर दोस्तों हम अमल नहीं करते, यकीन हमारा कमजोर है। दुनिया वालों का यकीन है, चीजों का, असबाब का, बगैर देखे उसको कर लेते हैं, लेकिन ये अमल अल्लाह पाक ने ऐसे ताकतवर दिए। तो रोजाना कुरान पाक की तिलावत, और फरमाया के मौका बमौका की दुआएं, खाने बैठने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, बैतुल खला जाने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ, आईने में देखो तो क्या दुआ पढ़ने की, मुसलमान भाई को हंसते चेहरे से मिलो ये भी दुआ, सलाम करो ये भी दुआ, सलामती में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 नेकियां या अल्लाह। एक किताब में पढ़ा और अहले इल्म हजरत से सुना, जो रोजाना 20 मरतबा 30 मरतबा तकरीबन इतना कुल लफ्ज है सलाम करेगा जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। तो हमें ये आसान अमल दिए जा रहे हैं, आसान अमल है। तो उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के अल्लाह को याद करें, और इन दुआओं का मसनून दुआओं का एहतिमाम करें। हम बच्चों को भी इन दुआओं की तरगीब दे घरों में, के बेटा बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाओ, बेटा तू घर में दाखिल हुआ तो अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहा, वापस इनको भेजो, ताकि बच्चों में अभी से सलाम का रिवाज आ जावे। सलाम आम हो जाएगी, सलामती में रह जाएंगे, सलामती मिलेगी हमें। और फरमाया कि इस तरीके से दुआ मांगना अल्लाह से लव लगा, दुआ मोमिन का हथियार बताया, इबादत का मकसद बताया, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत बताई। दुआ के जरिए से अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाता है। और जितनी दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे, नहीं मांगेंगे तो अल्लाह नाराज होंगे। मांगो उसी से देता, खुशी से कहता ना किसी से, अल्लाह पाक की निराली शान है। हाँ, इंसानों का मिजाज है कि कोई सवाल करे, कोई चीज मांगे तो इंसान का चेहरा फेर लेगा, हैं कि लाओ भाई 5,000 रुपया 10,000 रुपया, तो वो बिगड़ जाएगा, या तो उसके दिल में खोट यानी बुरा लगेगा। हाँ, उधर से आता होगा तो जल्दी से चलो मैं आया जल्दी जल्दी फोन लेकर, होता है बाज मरतबा गलियां बदल देगा। क्या हुआ कि इंसान से सवाल किया, अल्लाह फरमाते ओ नादान इंसान, तूने मुझे नहीं पहचाने मेरे खजाने कितने हैं, वराउल वरा है, है? देखो पानी बारिश में की मौसम में कितना आता है अल्लाह के खजाने से, दरख्त, गेहूं और ये सारी चीजें अल्लाह के खजाने से कितनी आती है, बेशुमार। पैमाना मापने की चीज अल्लाह के यहाँ नहीं है, अल्लाह बेशुमार देते हैं, अल्लाह के खजाने बेशुमार है। कोई मांगने वाला तो हो तो दुआ मोमिन का हथियार बताया, हाँ कि इस हथियार का इस्तेमाल करो। हाँ, मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्ला फरमाते थे कि जिस नबी ने उस उम्मत के लिए बहुत पूरी जिंदगियां कुर्बानियां दी, पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी, क्या उस उम्मत के लिए मैं रोजाना 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल कर उम्मत के गम के लिए मैं दुआ न मांग। अपने निजी मसले हैं, बीवी बच्चों के मसले हैं, घरों में टेंशन प्रॉब्लम उलझने हैं, रिश्तेदारों के मसले, पड़ोसियों के मसले, भाई भाई के मसले, और पता नहीं विरसाई के विरसाई के मसले, और कितने मसले टेंशन दुनिया में। हाँ, इसलिए दोस्तों फरमाया कि हम अल्लाह से लव लगाकर दुआएं मांगे, कि दुआ के जरिए से अल्लाह पाक रास्ते आसान कर देंगे, और यकीन के साथ जितनी दुआ मांगी जाएगी इतनी अल्लाह के खजाने में वो चीज कबूल हो जाएगी, यकीन के साथ। हाँ, कि फरमाया कि दुआ का बे नहीं बदला दुनिया में मिलेगा, या तो वो दुआ जमा हो जाएगी, कयामत के दिन दिखाई जाएगी कि देखो आपने ये दुआ मांगी थी दुनिया में, उसका हल नहीं हुआ, हमने आज ये बदला दिया। तो वो अर्ज करेगा, उस दिमाग में सोचेगा कि या अल्लाह पूरी दुआ अगर यहाँ मिल जाती तो कितना बड़ा नफा और एजाज हो जाता। हाँ, बाज मरतबा आने वाली परेशानियां मुसीबतें, हाँ, कि अल्लाह फरमाते तेरी वो दुआ कबूल नहीं है, लेकिन ये बीमारी, ये परेशानी आने वाली थी टेंशन, उसको हमने दुआ के जरिए से, दुआ की बरकत से हटा दिया। तो ये भी अल्लाह का जिक्र बताया, दुआ भी मोमिन के लिए हथियार बताया, दुआ अल्लाह का जिक्र है सबसे बड़ा। हाँ, आज तो हम दुनिया वालों से मांगते हैं, वो इंसान तो खुद ना मोहताज है, मोहताज किसी को क्या देवे, खुद मोहताज है वो तो, इतना मोहताज पेशाब करने का मोहताज, वो तो सांस लेने का मोहताज है इंसान। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले, इंसानों को उसने पैदा किया, इंसानों के दिल उसके कब्जे में है। तो दोस्तों हम अल्लाह के खजाने में मांगे, अल्लाह के पास मांगे दुआ, और दुआ के जरिए से अपने सारे प्रॉब्लम को हल करावे। हाँ, बीवी बच्चों के मसले, घर कारोबार के मसले, आज तो उम्मत टेंशन में, मौल साहब दुआ कर दो भाई, हथियार तो तुझे दिया है, हाँ तू भी मांग, अल्लाह वालों से भी कहेंगे, लेकिन तू भी अल्लाह के दरबार में पड़ जा, अड़ जा, अल्लाह के डर से एक आंसू निकला। हदीस में लिखा मक्खी के सर बराबर एक आंसू निकला, कितना, मक्खी के सर के बराबर, जहन्नम की भयंकर आग को बुझाने के लिए काफी। अब दुनिया के मसले तो कोई मसले हैं आखिरत के मसले के सामने? हाँ, जहन्नम की आग कितनी भयंकर कि मशरिक में एक जर्रा बराबर छोड़ दी जावे तो मगरिब तक सारे इंसान जलकर खाक हो जावे, सारी जमीन पर कोई सब्जावार कयामत तक न उगे, इतनी सख्त आग। और उसको यानी उससे बचने के लिए अल्लाह ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें एक रास्ता दिखा दिया कि अल्लाह के डर से आंसू बहा लो, अपने प्रॉब्लम और मसाइल अल्लाह के पास पेश कर दो, अल्लाह फुला मसला है हल नहीं होता, तू आसान फरमा दे। हाँ, तो अल्लाह के डर से एक आंसू निकल गया, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी। तो दोस्तों ये दुनिया के मसले तो कोई मसले नहीं है, इसलिए दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत ये आलमी तौर पर हो रही, ये सदी का बहुत बड़ा अतिया है, अतिया। हाँ, मौलाना अहमद लाठ साहब फरमाते हैं इस दौर के हर दौर में रब्बानी लहर चलती है, इस दौर की रब्बानी लहर फरमाया कि ये दावत तो तबलीग की मुबारक मेहनत। हाँ, इसको तन मन धन के साथ करना, इसके लिए वक्तों को फारिग करना, इसके लिए जगह बनाना, ये दुनिया कसम खुदाए पाक की किसी को फुर्सत नहीं देगी, न बीवी देंगे, न बच्चे देंगे, न दुकान देगा, न कोई जॉब शॉप में वक्त देगा, न समाज संसार सोसाइटी हमें फुर्सत देगी, और एक दिन हमेशा की फुर्सत मिल जाएगी। हाँ, उससे पहले पहले हम अपने वक्तों की तरतीब बनावे। प्यारे आका ने फरमाया जिसका खुलासा समझदार दानिशमंद अकलमंद इंसान कौन, होशियार इंसान, فرمایا موت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں کہ مجھے کیا چیز کام آنے والی. اور محنتیں نہیں ہوگی دوستو تو گھروں میں پرابلم, ٹینشن, الجھنیں, مسئلہ, باپ بیٹے میں 36 کانٹ, ساس بہو میں 36 کانٹ, دل نہیں ملیں گے جسم مل جائیں گے, گھر جہنم کدا بن جائے گا. کیا ہوا کہ دین کی محنتیں نہیں ہوئی, دین زندگیوں میں نہیں اترا, تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اپنے بھائی کو پرایا سمجھ رہا ہے, بھائی بھائی سے انبن ہو رہی ہے. کورٹوں میں 70% کیس مسلمانوں کی ورثائی کے چل رہے ہیں, بھائیوں میں, ماں باپ میں, رشتے داروں میں, بیچنی کے بارے میں اتنے سارے کیس چل رہے ہیں. کیوں, کیا وجہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے؟ دین لانے کے لیے ایک محنت ہے. کیا ہے؟ محنت ہے, قربانی ہے. آج تو ہم زمین پر ہیں, کل زمین ہمارے اوپر ہو جائے گی. ابھی میں بولتا ہوں, آپ سنتے ہیں, ایک 5 منٹ کے بعد, 2 منٹ کے بعد میرا کیا ہوگا, آپ کا کیا ہوگا, کوئی انسان کہہ نہیں سکتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, کل کی تو کیا پل کی بھی خبر نہیں انسان. ہاں, اس لیے دوستو آج کل تو چلتے چلتے لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. ہاں, باتیں کرتے کرتے لوگ جا رہے ہیں, موبائل پر خبریں آ رہی ہیں, مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں, اے فلانا کا جنازہ مغرب بعد اٹھایا جائے گا, عصر بعد اٹھایا جائے گا, عشاء میں اٹھا جائے گا. دوستو یہ جنازے کا جو اعلان ہوتا ہے مرحوم کا, کل اسی مائک کے ذریعے سے ہمارا آپ کا اعلان ہوگا. ابھی ہمارے مولانا احمد حسین صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ بھائی ہم جس مسجد میں جماعت میں تھے یو پی کے کسی علاقے کے اندر, ظہر میں اعلان ہوا کہ کئی بھائی مرحوم ہو گئے, ان کا جنازہ مغرب میں اٹھایا جائے. اب مغرب کی نماز پڑھے تو 2 جنازے آئے, تو ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی جنازہ کا ایک اعلان ہوا تھا, 2 آ گئے. بولے جس نے ظہر میں اعلان کیا تھا اسی کا جنازہ ہو گیا. ہاں, یہ دنیا کی زندگی ہے. ہاں, اس لیے دوستو عقل مند, سمجھدار انسان, ہوشیار انسان وہ ہے, مجھے کیا کام آنے والا ہے. قیامت کے میدان میں کوئی ایک نیکی نہیں دے گا, نہ بیوی, نہ بچہ, نہ رشتہ دار, نہ دوست احباب, سارے دور بھاگیں گے. ہاں, سارے دور بھاگیں گے, ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں گے. ہاں, دنیا میں کوئی نہیں بنتا تو وہاں کیسے بنے گا؟ ٹیمپو پاچھڑ رکھے نہیں, تو تارو کر. میں نے تو اس کو شاباشی دی کہ بیٹا بہت اچھی بات تو نے لکھا, اپنا اپنے کرنے کا ہے, جو کرو گے وہ پاؤ گے, اور نہیں کرے گا وہ پچھتاوے گا. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے, اور وہاں کا پچھتانا بیکار ثابت ہوگا قیامت کے میدان. پچھتاوے کے مارے ہاتھ چاوے یعنی چاپ ڈالے گا, یہاں کوہنیوں تک اس کا پچھتاوا ختم نہیں ہوگا. اب پچھتائے کیا, چڑیا چگ گئی کھیت, اب پچھتانے کا کوئی آرہ اور چانس اور موقع نہیں ہے. دنیا میں واپس وہاں سے نہیں آنے والے, اس لیے ابھی سے کرنا ہے. زندگی باقی, سانس باقی, سانس باقی, زندگی باقی ہے, کر لو. سانس باقی ہے, جو کرنا ہو کر لو. سانس ختم, چانس آدمی کا ختم ہو جائے گا. اس لیے دوستو یہ سہانا وقت ہے, فارغ بھی ہونا ہے. اور دیکھو مغرب کی نماز کے بعد بہت اہم مجلسیں لگیں گی, بڑے اللہ والے ہمارے یہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے. پورا مجمع تھان لو, ابھی سے ضروریات پوری کر لو, 3 تسبیحات بھی پوری کر لو. اور فرمایا کہ ساری ضروریاتوں سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اذان سے پہلے سارا مجمع آ جاوے, اور جب بھی اعلان ہو جاوے نماز کے بعد سارا مجمع مل جل کر آگے کی صفوں میں تشریف لے آوے, اور دھیان کے ساتھ ان کی باتوں کو سننا, دل کی فاٹک کو کھلے رکھتے سننا, اور سوچنا کہ یا اللہ یہ لوگ ہم کو سمجھا رہے ہیں, کیا بات ہے, یہ تو ہمارے سچے ہمدرد اور محسن ہیں. ہاں, ہمارے خیرخواہ ہیں. سب سے بڑے خیرخواہ ہمارے یہ ہیں کہ ہماری دنیا آخرت کے پریشانیاں, پرابلم, ٹینشن, مسئلے کا حل وہ برتا رہے ہیں. تو سارے ساتھی بھائی جم کر بیٹھیں گے مغرب کے بعد, ابھی فرصت بھی ہے, فارغ بھی ہونا ہے, تسبیحات بھی پوری کر لیں. سبحان اللہ.